إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وآله الطيبين الطاهرين المظلومين، سيما للإمام المنتظر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. کربلا میں شام غریباں آ گئی. دنیا بھر کے عزادار مجلس میں شرکت کے دوران اگر آن لائن ہیں تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سر پہ چھت کا سایہ ہے، فرش بچھا ہوا ہے، اگر بزرگوں کے طریقہ کار کے مطابق عزاداری کر رہے ہیں تو یقیناً گھر میں اندھیرا ہوگا، ساری روشنیاں بجھا دی گئی ہوں گی. تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے اپنے بستروں پہ جائیں گے، ان کے بچے خیر سے ہیں، ان کی بچیاں سلامت ہیں، ان کی گھر کی عورتوں کی چادریں اور حجاب محفوظ ہیں. لیکن اس کائنات کا ایک ایسا گھرانہ تھا جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، ہے، جو اہل بیت ہیں وہ آج کی رات بے بیت کے ہیں. بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے کوئی سایہ تو چھوڑے چادر بھی نہیں. ایک کل کی رات تھی، ایک آج کی رات ہے. یہ 24 گھنٹے میں کتنا بڑا انقلاب و تبدیلی آ گئی. کل ہر بی بی خیمے میں بیٹھی تھی، آج خیمہ ہی نہیں. کل ہر بی بی فرش پہ بیٹھی تھی، آج زمین کی مٹی ہے. کل ہر بچی کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنے والا اس کا باپ تھا، آج بچی یتیم ہو کے تماچے کھا رہی. کل ہر خاتون کا سہاگ سلامت تھا، آج سب کے سہاگ اجڑ چکے. کل ہر ماں کے پہلو میں اس کا جوان بیٹا بیٹھا ہوا تھا، ماں اس کو دیکھ دیکھ کے جی رہی تھی، آج کلیجے میں برچھی کھائے جلتی ریتی پہ وہ جوان پڑا ہوا. یہ کتنا بڑا انقلاب، یہ کتنی بڑی تبدیلی فقط ایک دن میں واقع ہو گئی. ہاں، کربلا کا جنگل، رات کا اندھیرا، سناٹے کا عالم، جہاں پہ زینب اپنے لٹے گھر کو بیٹھی ہے صرف وہیں پہ تھوڑی سی روشنی ہے. یہ روشنی کہاں سے آئی؟ کیا کسی غیرت مند مسلمان کو غیرت آ گئی اور اس نے ہاتھ جوڑ کے زینب کبرا کے سامنے کچھ چراغ رکھے اور کہا کہ شہزادی، آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ رات کے اندھیرے میں ڈر نہ جائیں، میں تھوڑا سا انتظام کر دیتا ہوں روشنی کا. نہیں، یہ جلتے ہوئے خیموں کی روشنی ہے جس میں زینب اپنے لٹے گھر کو لے کے بیٹھی. لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ آتا ہے، اور بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اس سوال سے 11 محرم کا جہاد شروع ہوگا. 11 محرم، ایک سوال ذہن میں یہ آتا، زینب اپنے لٹے گھر کو لے کے کربلا کے جنگل میں بیٹھی ہے. زینب تو کربلا کے میں آنے سے پہلے بار 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 یہ پیغام دیتی رہی ہیں کہ اگر بھائی سے میں الگ ہو گئی تو زینب زندہ نہیں رہ سکتی. جب 28 رجب کا قافلہ مدینے سے چل رہا تھا اور عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ آقا، اچھا اگر جانا ہی ہے تو خود چلے جائیے، گھر کی خواتین کو آپ دشمنوں کے بیچ میں لے جا رہے. حسین نے جو جواب دیا وہ تو عام مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے، لیکن زینب کبرا پہلے تڑپ کے کہتی ہیں، اے ابن عباس، میرے بھائی کو مشورہ دے رہا ہے یا زینب کی موت کا سامان کر رہا؟ کیا بھائی سے جدا ہو کے بہن زندہ رہ سکتی؟ जब मक्के से निकलकर तनईम के मकाम पर जैनब कुबरा की शौहर अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार जैनब को आखिरी सलाम करने आए थे और जैनब के दिल में ख्याल आया कि कहीं मेरा शौहर मुझे वापस ले जाने तो नहीं आया है, तो इससे पहले कि अब्दुल्ला बात शुरू करे जैनब ने तड़प के कहा कि आए मेरे चचा के बेटे, अगर वापसी की बात करेगा तो मैं ना तो नहीं कह सकती हूँ, हुक्म शरीयत है, मगर जैनब नहीं जाएगी, जैनब की मैयत जाएगी, जैनब का लाशा जाएगा, जैनब का जनाजा जाएगा, क्योंकि भाई से अलग होके बहन जिंदा नहीं रहेगी। ये सिद्दीका ताहिरा फातिमा की सिद्दीका ताहिरा बेटी है, कभी गलत बयानी नहीं कर सकती। आम खवातीन की तरह से जरा सी मुसीबत के अंदर जजा फजा बढ़ा चढ़ा के नहीं पेश कर सकती, तो बार बार कह रही है कि भाई से अलग होकर मैं मर जाऊंगी। अब अगर बदतमीजी का जुमला ना हो तो हाथ जोड़कर सवाल करूं कि जब असरे आशूर हुसैन ने आकर अलविदाई सलाम किया, बहन ने भाई के गले का बोसा लिया, भाई ने बहन के बाजुओं का बोसा लिया और कहा कि बहन जैनब अब 55 बरस का साथ छूट रहा है, तो बार बार ये कहने वाली बहन कि मैं मर जाऊंगी, नऊज़ु बिल्लाह, फिर जिंदा कैसे रही, क्या गलत बयानी करती चली आ रही। अब यहां पे एक जुमला में मरहूम हाफिज किफायत हुसैन साहब अल्लाह मकामहू का पढ़ू और फिर वो जुमला पढ़ू जो मैंने कहा कि 11 मुहर्रम के जिहाद की बुनियाद बन रहा, नहीं नहीं, जो शाम गरीबा के मसाइब में बुनियाद बन रहा। मरहूम हाफिज किफायत हुसैन साहब कहते थे आशूर की दोपहर की जो मजलिस मैंने पढ़ी उसका आखिरी जुमला, अला वक़द ज़ुबिहा हुसैन बिकरबला, अला वक़द क़ुतिला हुसैन बिकरबला, हुसैन कुश्ता शुद मैदान करबला में, जिब्राइल का नोहा गूंज रहा है, हुसैन मारे गए, हुसैन ज़बह हो गए, जिब्राइल जिब्राइल नोहा पढ़ रहे हैं। मरहूम हाफिज किफायत हुसैन साहब का जुमला कि मैदान करबला में असर आशूर खाली हुसैन ज़बह नहीं हुए, जैनब भी ज़बह हो गए, क्योंकि इस्लाम में लफ्ज एक है तरीका अलग है। आम जानवर का ज़बह है कि उसकी गर्दन काटो, मछली का ज़बह है उसे पानी से निकालो और फिर देखो वो कैसे तड़प रही है, वो तड़प तड़प के मरती है, ये उसका ज़बह है। हुसैन का ज़बह ये है कि सीने पे शिमरे मलून बैठा है, कुंद खंजर चला रहा है, रगे कट रही है, और जैनब का ज़बह ये है कि सर से चादर छीनी जा रही है, अली की बेटी फातिमा की वारिस मैदान करबला में तड़प तड़प के चादर छीनने का मंजर देख रही, जैनब भी ज़बह हो गई। लेकिन जो जुमला मुझे कहना था जो शाम गरीबा में जैनब के जिहाद की बुनियाद बन रहा है वो ये है कि जाहिरी एतबार से भी हम और आप जिसे किसी की मौत कहते हैं, जैनब हुसैन का आखिरी सलाम सुन के मर जाती उसी वक्त हुसैन के एक जुमले ने जैनब को जिंदा रखा और इस जुमले ने शाम गरीबा के सारे मसाइब बर्दाश्त करने की ताकत दी और हुसैन के इस जुमले ने कूफा और शाम के बाजारों और दरबारों के इम्तिहान तय कराए। सिर्फ एक जुमला, जैनब बहन आखिरी सलाम के बाद कहा, जैनब बहन मैं जा रहा हूं, अब ये सारा काफिला भी तेरे हवाले है और मेरा मिशन भी तेरे हवाले है, यहां तक का जिहाद हुसैन को करना था इसे मुकम्मल तुझे करना है। अब ये जो जैनब ने सुना, हुसैन का जिहाद मुझे मुकम्मल करना है, हुसैन का मिशन मुझे मुकम्मल करना है, मरती भी जैनब में एक नई जिंदगी आ गई, मगर इस फर्क के साथ आ गई कि अब जैनब जैनब न रही। वक्त के तहत ये जैनब कभी अकबर बनी है, यही जैनब कभी अब्बास बनी है, यही जैनब कभी हुसैन बनी है। अब ये जिहाद तेरे हवाले, इसे मुकम्मल तुझे करना है। भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे के गया, इस जिम्मेदारी ने मरती हुई जैनब को एक नई जिंदगी दी और जैनब ने कुछ इस तरह से अपने लुटे हुए काफिले को संभाला कि हर बीवी परेशान है, हर बच्चा रो रहा है, हर तरफ खौफ का आलम है, मगर अली की ये शेर दिल बेटी, अली की ये शेर दिल बेटी सब्र व इस्तेकामत का मुजस्समा बने हुए अपने इस लुटे हुए काफिले को किस तरह संभाल रही है कि बस बस एक बार जैनब ने घोड़े दौड़ने की आवाज सुनी, भैया मारा गया। अला कसूब हल हुसैन बे करबला का नोहा ज़ैनब ने जिब्राइल से सुना। सज्जाद ने ज़ैनब के सामने बाबा के उस कटे सर को सलाम किया जो जमीन करबला से नोके नैजा पे बुलंद हो रहा है, और ज़ैनब कुबरा खेमे में आ। अब ज़ैनब को हुसैन बन के इस काफिले को संभालना, अब ज़ैनब को अब्बास बन के इस काफिले को संभालना। एक बार खेमे में आई और फिज़ा को बुला के एक जिम्मेदारी दी। क्यों? जैसे ही खेमे में आई, एक मरतबा ज़ैनब ने घोड़े दौड़ने की आवाज सुनी। अम्मा फिज़ा, मेरा भैया मारा गया, मेरा पूरा घराना लुट गया, मर्दों में कोई जिंदा नहीं रहा, अब ये घोड़े क्यों दौड़ रहे हैं? फिज़ा ने खेमे से निकल के एक अजीब मंजर देखा। क्या देखा? वो लईन इब्ने लईन हमारे साथ अपने सिपाहियों से कहता है, तुम अरब के रहने वालों, तुम्हें पता है जब हम किसी से पूरा इंतकाम लेते हैं तो उसके लाशे को पामाल करते हैं। घोड़े तैयार करो, हमें हुसैन और हुसैन के साथियों के लाशे पामाल करना। घोड़ों की नालबंदी होने लगी, घोड़े तैयार होने लगे। भाई ये मंजर देखकर हुर की फौज, हुर के साथ आई थी ना वो फौज, उमर साथ की आर्मी को ज्वाइन किया था, और अपने बेटे को और भाई को और गुलाम को लेके चला गया, बाकी फौज तो है। एक बार आगे बढ़ी और कहा कि आए उमर साथ, हमारे आका ने गलती की, हम कुछ ना बोले क्योंकि गलती की, सजा भी भुगत ली, लेकिन ये हमारी गैरत के खिलाफ है कि हमारी आंखों के सामने हमारे आका का लाशा पामाल किया जाए। उमर साथ ने कहा कि हुर से मेरा कौन सा इख्तलाफ था, चलो ले जाओ हुर का लाशा, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। करबला ही में बनी असद का कबीला भी रहता, जो आज आशूर के दिन कफन पहन के बेल के कंधों पे रख के दौड़ता हुआ आता है ना, वो कबीला भी वहीं रहता। उसके नौजवान आगे बढ़े, हमारे कबीले वाले हबीब इब्ने मुजाहिर ने बड़ी गलती की, लेकिन ये हमारी गैरत के खिलाफ है, हमारे होते हुए उसका लाशा पामाल हो जाए। उमर साद ने कहा अच्छा उसका लाशा भी ले जाओ। हर शहीद का कोई ना कोई जानने वाला, दोस्त, रिश्तेदार, कबीले वाला, ससुराल वाला आगे आता और लाशा ले जाता। मैदान करबला से सारे लाशें उठ गए, हुसैन के पूरे काफिले के लाशें उठ गए, सब लाशें ले गए, मगर फकत एक लाशा है जो करबला की जलती रेती पर बाकी है। कोई नहीं है जो आकर कहे उमर साथ ये मोहम्मद के नवासे का लाशा है, ये अली के रक्त जिगर का लाशा है, ये फातिमा ज़हरा के दिल बंद का लाशा है, ये हुसैन इब्ने अली का लाशा है। अगर अकबर जिंदा होते तो बाबा का लाशा बचाने आते। एक मर्तबा घोड़े तैयार हो चुके थे, हुसैन के लाशे पे इधर घोड़े दौड़े, फिज़ा ने मंजर देखा, आवाज दी, शहजादी जरा आके देखिए मेरे आका के लाशे पे क्या गुजर रही है। ज़ैनब फिर खेमे से बाहर आई, ये मंजर देखा, ये मंजर देखा। एक मर्तबा मदीने का रुख किया, आवाज दी, नाना जिस हुसैन को अपने सीने पर सुलाता था जरा आके देख, उसी हुसैन के सीने पे घोड़ों की टापे। हुसैन की लाशा पामाल हुआ। शेर फिज़ा का वाकया मौका मिला तो कल की मजलिस में पढ़ूंगा। लाशा पामाल हुआ। ज़ैनब एक बार फिर खेमे में गई, और अब जो खेमे में गई तो दोबारा घोड़े दौड़ने की आवाज आई। उमर साद ने कहा कि लाशे पामाल हो गए, अब तुम्हें लूट मार की इजाजत है, जाओ इन खेमों में जाओ, जिसको जो सामान और असबाब चाहिए वो ले ले। एक मर्तबा ये जालिम, ये शकी दौड़ते हुए आ रहे हैं, घोड़े दौड़ते दौड़ाते हुए आ रहे हैं, बीबियों से कह रहे हैं खेमों से निकलो। कोई बीबी बाहर आने को तैयार नहीं, कोई बीबी बाहर आने को तैयार नहीं है। आखिर उमर साद ने कहा आग लगा दो खेमों को, खेमे जले, खेमे जले, यही खेमा गाह है जहां की आप जियारत करते हैं। खेमे जल रहे हैं, पहला खेमा जला, बीबियां दूसरे खेमे में गई, वहां से अगले खेमे में गई, वहां से खेमे जलते जा रहे हैं, बीबियां एक से दूसरे खेमे में जा रही, यहां तक के 18 में से 17 खेमे जल गए। अब ये आखिरी खेमा है। करबला का मंजर दिमाग में लाइए, आप में से हर एक हाल ही में ज़ियारत करके आया पिछले 5 सालों में खेमा गाह में, आखिरी खेमा आका सज्जाद का खेमा है, आखिरी खेमा आका सज्जाद का खेमा है, जिसके बाद खेमा गाह की हद खत्म हो जाती है। सारी बीबियां ज़ैनब कुबरा के साथ सज्जाद के खेमे में जमा हैं। मेरा मजलूम आका सज्जाद गशी के आलम में है। और एक बार बीबियां कहती हैं, शहजादी आका ने अब आपको हमारा कायद और सरदार बनाया है, बताइए क्या हुक्म है? अगर आप कहें तो हम जल के मर जाएंगे, और अगर आप इजाजत दें तो बाहर निकलेंगे। ज़ैनब ने अजीब जुमला कहा, कहा बीबियों इमाम वक्त इमाम जमाना मेरा बेटा सज्जाद है, पहले अपने जमाने के इमाम से पूछूंगी फिर जवाब दूंगी। शाना हिला के कहा सज्जाद हाय ये कैसा इमाम जमाना है जिसको पहला ही मसाला अपनी इमामत में ये पेश आ रहा है कि फूफी कह रही है बता अब हम क्या करें। और सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा अलैकुन्ना बिस्सहरा अब पर्दे का हुक्म माफ हो गया है, लुटे घर को लेके जंगल में निकल जाइए। जिसकी इमामत का आगाज गैरतमंद इमाम है सज्जाद, गैरतमंद इमाम की इमामत का आगाज पर्दा साकित है। और ज़ैनब लुटे घर को लेके निकली, ज़ैनब लुटे घर को लेके निकली, सारी बीवियां बाहर आ रही हैं। हमीद इब्ने मुस्लिम फौज यजीद का सिपाही नहीं है, उसका काम है खाली डायरी लिखना। वो एक तरफ बैठ के सिर्फ वाकयात को नोट करता है। वो कहता है कि मैंने देखा कि सारी फौज लूटमार में लगी है, खेमे जल रहे हैं, बीबियां बाहर आ रही हैं। वाह मोहम्मदा वाह अलिया वाह अब्बासा वाह हमजता वाह जाफरा की फरियादें बुलंद हो रही हैं। और सब बीबियां बाहर आ गई, सबसे आखिर में एक नन्ही सी बच्ची बाहर आ रही। और वो इतनी देर से बाहर आई कि उसके कुर्ते में आग लग चुकी है मगर उसे कुर्ते की आग की कोई फिक्र नहीं है। बस वो बार बार सीने पे हाथ मारती है, कभी कहती है हाय मेरा बाबा, कभी कहती है हाय मेरा चचा। मेरी भी एक छोटी बच्ची थी, सफर के आलम में बाप को अपने घर वाले याद आते। मेरी भी एक छोटी बच्ची थी जिसे छोड़ के मैं आया था। इस बच्ची को मैंने देखा, मैं तड़प उठा। एक बार अपनी ड्यूटी छोड़ के इस बच्ची के करीब आया कि अगर ये बच्ची इसी तरह मातम करती रही तो इसका बदन जल जाएगा। हाथ आगे बढ़ाया, हाथ आगे बढ़ाया, करबला का मैदान अंधेरा करीब, अभी अभी सूरज डूबा नहीं है, अंधेरा होता बढ़ता चला जा रहा है। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ताकि कुर्ता पकड़ूं, लेकिन वो बच्ची जिसे आग की फिक्र नहीं थी मातम कर रही है, इधर मेरा हाथ बढ़ा, इधर पूरे जलाल के आलम में पीछे हटी। खबरदार मेरे बदन को हाथ न लगाना, बहुत छोटी तो हूं मगर फातिमा जहरा की पोती सकीना हूं, ना मेरा मेरा बदन नहीं छू सकता। मैंने हाथ जोड़े, शहजादी फकत कुर्ता पकड़ के आग बुझाना। कुर्ता पकड़ा, आग बुझाई, बच्ची ने हैरत से मुझे देखा, सर से पैर तक दोबारा देखा, एक मर्तबा कहा कि ऐ शख्स तूने एक मेहरबानी की है ना, एक मेहरबानी और कर दे और मुझे नजफ का पता बता दे। अब ये क्या, ये तो एक ईसाई आदमी, इसको क्या पता नजफ क्या। कहा नजफ 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 का पता क्यों मालूम कर रही है। कहा नजफ में मेरा दादा दफन है, वो कायनात का मुश्किल कुशा है, दादा की कब्र पे जाऊंगी, अपने आप को गिराऊंगी। दादा हर एक के यतीम बच्चों की मदद को आते, तेरे हुसैन की यतीमा तुझे पुकारती रही और तू अपनी अपनी सकीना की मदद को ना आया। मगर आया, सकीना का दादा आया, बहुत देर से आया, शायद वो आखिरी रिवायत हो, शायद उसे पढ़ने का मौका ना मिले। और इधर ज़ैनब कुबरा ने आखिर में देखा कि सकीना भी बाहर आ चुकी, अंधेरा छा चुका। एक बार आवाज दिया है कुलसुम बहन, जब ये सारे खेमे जले और सारी बीबियां बेचैनी के आलम में बाहर निकली तो बिखर बच्चे बिखर गए, आओ हम और तुम बच्चों को जमा करें। अली की ये बेटियां जो कभी दिन की रोशनी में शहर में भी अकेले बाहर नहीं निकली है, हमेशा महरम के साथ गई है, आज शहर नहीं है जंगल है, आज कोई महरम मर्द नहीं है, तन तन्हा है। लेकिन हमारा सलाम उस ज़ैनब कुबरा को, कुलसुम बहन आओ बच्चों को जमा करें। बच्चे बिखर गए थे मैदान करबला में, बच्चे भी किस तरह बिखरे थे ये भी सुन लीजिए। बादे करबला मदीने में किसी ने पूछा था मौला सज्जाद आपका घराना करबला में कैसे बिखर गया। मौला तस्बीह पढ़ रहे थे, एक मर्तबा कहा ये तस्बीह अगर टूट जाए तो किस तरह जमीन पे दाने बिखर के रह जाते हैं। मोहम्मद की औलाद अली और फातिमा के जिगर के टुकड़े इसी तरह मैदान करबला में बिखर के रह गए। तस्बीह के टूटे हुए दानों को जमा करने वाले का नाम है ज़ैनब। आओ बहन, अब बच्चे कहीं रो रहे हैं, कहीं सो रहे हैं, और एक झाड़ी के पीछे दो नन्हे नन्हे बच्चे औलादे अकील में। अभी आपने पुरसे की जियारत में औलादे अकील को सलाम किया, शोहदाए औलादे अकील। दो छोटे छोटे बच्चे एक झाड़ी के पीछे गले में बाहें ढाले लेटे। जैनब ने कहा, कुलसुम बहन, ऐसा लग रहा है कि इनको बड़ी गहरी नींद है, आहिस्ता आहिस्ता चलो, एक बार इनकी आंख खुल गई तो शायद दोबारा नींद ना आए। दोनों बहनें आहिस्ता आहिस्ता करीब आईं, करीब आके जैनब ने झुक के देखा तो ये सोते हुए बच्चे न थे, दो नन्हे नन्हे लाशें थे जिनके सीने पे घोड़ों की टापों के निशान। जब ये घोड़े दौड़े तो इन बच्चों के ऊपर से ये घोड़े दौड़ गए। जैनब ने कहा, कुलसुम, एक लाशा तुम उठाती हो, एक लाशा मैं उठाती हूँ, एक लाशा तुम उठाओगी, एक लाशा मैं उठाऊंगी, घबराना नहीं, ये लाशें उठाना है। लाशें तो उठाए मगर बहुत देर के बाद अब जैनब का दिल भर आया। एक मर्तबा फुरात का रुख किया, अब्बास तू ना रहा तो आज ये वक्त आ गया कि तेरी बहन को लाशें भी उठाना पड़ रहे हैं। और अब्बास को बार बार तो याद किया है, लेकिन एक और जुमला सुन लीजिए, जब अब्बास को याद किया, एक ये जुमला, एक इसके बाद वाला जुमला, जब मुख्तार के दरबार में ये दुश्मनों को गिरफ्तार करके लाया जा रहा था ना, तो मुख्तार हरेक से पूछता था कि बता तूने करबला में क्या किया। खूली आया, खूली, जब वो गिरफ्तार करके लाया गया तो मुख्तार ने पूछा तूने करबला में क्या किया। आपको मालूम है करबला में कुछ बड़े सालार ऐसे थे कि जिनसे कोई काम नहीं लिया जाता था, कहा जाता था बैठ जाओ, जब कोई बहुत बड़ा मसला होगा तुम्हें बुलाया जाएगा। हर मुला सिर्फ तीन मर्तबा बुलाया गया, तीर मारने के लिए। खुली कहता है, मुख्तार, करबला के मैदान में तीन ऐसे वाकयात है जिसमें मेरा हिस्सा, इब्ने ज़ियाद की खजाने में करबला के वाकयात की डायरी है जिसमें सब लिखा। मुख्तार हर एक की के स्टेटमेंट को टैली करते हैं, कोई झूठ नहीं बोल सकता। कहा, तीन, जिस वक्त उमर साद ने हुक्म जारी किया कि जाओ जाके लूट मार करो, मुझे आने में जरा देर हो गई, थोड़ी सी देर। अब लूट मार करने वाले तो जल्दी होती है, हर एक को अच्छी अच्छी चीजें उठाना है, मुझे देर हो गई। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर ना आई जिसको मैं लूट सकता था। हाँ, एक बार तीन चीजों पे अलग अलग मेरी निगाह पड़ी कि मेरे साथियों ने भी रहम खा के वो चीजें छोड़ दी थी। मैंने देखा कोई सामान नजर नहीं आ रहा, बस एक नन्ही सी बच्ची नजर आ रही है जिसके कान में गोशवारे, बहुत ही मामूली से सस्ते से गोशवारे। और जब कोई जालिम उसके गोशवारे छीनने जाता है ना, वो अपने गोशवारे अपने हाथों से छुपा लेती है, कहती है ये मेरे बाबा की निशानी है, मेरा बाबा तो मारा गया, उसकी निशानी मेरे पास रहने दे। तीन साल की यतीमा बच्ची की फरियाद सुनकर उमर साद और यजीदियों को भी रहम आ जाता, ये मामूली गोशवारे लेके क्या करेंगे। मैंने चारों तरफ देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा, मैंने सोचा मैं अपना नुकसान क्यों करूं, मैं आगे बढ़ा। बच्ची ने बेख्तियार फरियाद की, अरे ये मेरे बाबा की निशानी मेरे पास छोड़ दे। मैंने देखा कि ये बच्ची जो है वो रिजिस्ट कर रही है, मुजाहिमत कर रही है, देर हो रही है, कुछ और सामान बचा है वो उठाना है। चुनाचे मैंने ये गोशवारे जल्दी से छीने। इतना वक्त कहाँ था कि मैं गोशवारे खोल के छीनता, मैंने गोशवारों पे हाथ डाला, दोनों गोशवारे इस तरह खींच के उतारे कि बच्ची के दोनों कान कट गए, खून जारी हो गया, और मैं आगे बढ़ा। मैंने देखा कि सारे खेमे जल गए हैं, सारी चीजें लुट गई हैं, मगर एक नौजवान शक्ल से ही बीमार, जिस्म से ही बीमार, गशी के आलम में है, एक छोटे से बिस्तर के नीचे मामूली सा वो लेटा हुआ है। और उस बीमारी को देख के कोई यजीदी भी वहां नहीं जा रहा। मैंने सोचा मैं अपना नुकसान क्यों करूं, मैं आगे बढ़ा, क्योंकि मुझे जल्दी है ना, मैं देर से आया हूं। मैंने इस तरह से वो बिस्तर खींचा कि वो नौजवान बिस्तर से उछल के मुंह के बल जमीन करबला से जाकर टकराया। तीसरा जुमला पता नहीं आप किस दिल से सुनेंगे, मेरे लिए पढ़ना मुश्किल होता, जब मैं किसी मजमे में पढ़ता हूं तो उनके लिए सुनना मुश्किल होता। देखिए, मैदान करबला में ये कितने ही जालिम क्यों ना हो, ये कितने ही संदिल क्यों ना हो, ये शकी इब्ने शकी हैं, ये लईन इब्ने लईन हैं, मगर दो हस्तियों का रोब दो हस्तियों की जलालत, दो हस्तियों की हैबत इनके दिल में भी है, एक हुसैन। चुनाचे उमर साद ने हर मुला से कहा, जब तक हुसैन घोड़े पे सवार हैं, मेरा कोई सिपाही हुसैन के करीब नहीं जाएगा। जख्मी हुसैन का भी इतना रोब और जलाल। और दूसरे ज़ैनब कुबरा, ज़ैनब कुबरा अली और फातिमा की बेटी। हर एक को पता है कि ज़ैनब कौन है, सानिया ज़हरा है। चुनाचे ज़ैनब का एक रोब है, एक जलाल है। सबकी चादरें छिन गई, ज़ैनब की चादर पे कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर रहा। मैं यज़ीदियों की बात कर रहा हूँ, उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही। खुली कहता है कि मैंने देखा, बस फकत एक आखिरी चीज है, ज़ैनब के सर पे चादर है, ज़ैनब के सर पे चादर है, इसे कोई हाँ छीनने की कोशिश नहीं कर रहा। मैंने सोचा मैं अपना नुकसान क्यों करूं। एक मर्तबा मैं आगे बढ़ा, मैं वो हूं जिसने चादर ज़ैनब पे हाथ डाला, चादर ज़ैनब को खींचना चाहा। जिस वक्त मैंने चादर ज़ैनब को खींचा, ज़ैनब ने अपनी चादर को दोनों हाथों से पकड़ा, मजबूती से पकड़ा। बहुत ज़ईफ है, 55 बरस की ज़ैनब है, इतने दाग कलेजे पे हैं। हुसैन जैसा भाई मारा गया, अकबर जैसा भतीजा मारा गया, मगर अल्लाह रे फातिह खैबर की बेटी है, शेरे खुदा की बेटी है। एक मर्तबा बासे जरी की बहन है, चादर को थामा, खुली फौज का जवान सिपाही पूरी कोशिश करके थक गया, चादर को ना खींच सका। कहता है जब मैंने देखा इस तरह से चादर मेरे हाथ में नहीं आएगी, मेरे हाथ में कोड़ा था, मैंने कोड़ा उठाया, ज़ैनब कुबरा के चेहरे पे कोड़ा मारा, वहां खाल पटी, खून जारी हुआ। ज़ैनब ने तड़प के फरहाद को देखा बास, और मैंने ज़ैनब की चादर को छीन ली। ज़ैनब भी बेचादर की हो गई, ज़ैनब की चादर भी छिन गई, और सूरज ने अपने चेहरे पे नकाब डाली। कर्बला में अंधेरा और ज़ैनब बेमकनाओ चादर के अपने लुटे घर को जमा करते हुए, बच्चों के लाशें उठाते हुए, एक मर्तबा सबको एक जगह पे जमा कर लिया। और फिर कर्बला के वाकये की मुश्किल तरीन मंजिल आ गई, मुश्किल तरीन। अब मैं मौला की आमद तक नहीं पहुंच पाऊंगा, वो आपने सुन लिया सलाम वगैरह में, बस मेरे आखिरी जुमले। कर्बला के इस जिहाद की मुश्किल तरीन मंजिल आ गई, और वो क्या आ गई, वो ये कि थोड़ी देर के बाद इन भूखे और प्यासे लोगों के लिए खाने और पानी का सामान आ गया। सुन लिया जुमला आपने, एक आम सा जुमला ही। अरे पूछे कोई कर्बला की बीवियों से, ये जुमला नहीं है, ये कयामत है, कयामत। अगर किसी से आपको इंतहाई मोहब्बत, और वो आपसे कोई चीज मांगते दुनिया से चला जाए, और उस वक्त वो चीज आप उसको ना दे सके, जिंदगी में जब कभी वो चीज आपको नजर आएगी, आपको अपना वो मरने वाला याद आएगा जिससे आपको मोहब्बत है। अरे कर्बला के जिहाद में सैदानियों के लिए मुश्किल तरीन मौका। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि ये खाने पीने का सामान कौन लेके आया, भई ये तयशुदा बात है कि खाने का सामान भी आया, पानी का सामान भी आया, और एक मर्तबा लाने वाले ने सज्जाद की खिदमत में पेश किया। कहा मौला फरजंदे रसूल, ये सामान मैं लेके आया हूँ आपके घराने के लिए। ज़ैनब ने वो सामान, सज्जाद ने सामान लिया, पानी लिया, और पानी लेके पहले ज़ैनब के पास पहुंचे। वो भी अम्मा पानी आ गया है, पानी पी लीजिए। उस ज़ैनब की निगाह पानी पे पड़ी, कर्बला की सबसे बड़ी मुसीबत। एक मर्तबा ज़ैनब तड़प उठी, सज्जाद अब ये पानी आया है जब मेरा अकबर प्यासा चला गया, अब ये पानी आया है जब मेरा भैया हुसैन प्यासा चला गया। एक बार ज़ैनब कहती है, सज्जाद मैं ये पानी नहीं पीऊंगी, सज्जाद मैं प्यासी रहूंगी, मेरा पूरा घराना प्यासा। सज्जाद ने सर झुका लिया, कहा फूफी अम्मा ये पानी आ गया है, पानी नोश फरमाइए। ज़ैनब का जलाल बढ़ गया, सज्जाद बेटा मैं कैसे पानी पीऊं जिसका पूरा घराना प्यासा। जब तीसरी बार मेरे मजलूम आका सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा ये पानी पी लीजिए। अब यहाँ पे मौलाना ज़ैदी साहब एक रिवायत पढ़ते हैं, और वो जुमले नकल कर रहा हूँ। ज़ैनब ने हैरान होकर कहा, सज्जाद बेटा मुझे याद नहीं है जिंदगी में कभी मेरी कोई बात सुनने के बाद तूने उसे दोहराया, और इस वक्त मैं तीन मर्तबा मना कर रही हूं कि पानी नहीं पीना, और तू बार बार इसरार कर रहा है। कहा फूफी अम्मा बस जरा ये तो देखी, ये कहे कि अपना हाथ, इमामत वाला हाथ, इस्मत और तहारत वाला हाथ, मोजिजे वाला हाथ, ज़ैनब कुबरा की उसी इस्मत और तहारत वाली आंखों पे रखा, और कहा आसमान को देखिए, जैनब ने देखा सारे हिजाब हट गए, आसमान नजर आ रहा, साथ में आसमान पर जन्नत नजर आ रही, जन्नत के जन्नत में कौसर की नहर बह रही और कौसर की नहर के किनारे जैनब का घराना मौजूद है। रसूल खुदा मसनद लगाए बैठे और एक मर्तबा रसूल के सामने, नाना के सामने हुसैन खड़ा है और रसूल ने कौसर का जाम हुसैन को दिया, हुसैन बेटा ये पानी पी ले। हुसैन ने पानी देखा, कहा नाना मैं ये पानी नहीं पी सकता। हसन आगे बढ़ा, भाई भाई है ना, बिल्कुल हम उम्र, कहा भैया ये पानी मैं तुझे देता हूँ। पानी दिया, हुसैन ने कहा नहीं भैया हसन मैं ये पानी नहीं पी सकता। साकिये कौसर मेरा मौला अली, जामे कौसर लेके आगे बढ़ा, हुसैन बेटा ये पानी पी ले। हुसैन ने पानी देखा, कहा नहीं बाबा ये पानी मैं नहीं पी सकता। तो आखिर में किसे बढ़ना चाहिए। एक मर्तबा फातिमा जहरा पानी लेके आगे आई, कहा हुसैन जो अल्लाह को इम्तिहान लेना था वो हो गया, इम्तिहान पूरा हो गया, अब ये पानी पी ले। हुसैन ने माँ से भी कहा, अम्मा मैं ये पानी नहीं पी सकता। फातिमा ने सवाल किया, बेटा आखिर ये पानी क्यों नहीं पी रहा। कहा अम्मा अभी मेरी जैनब प्यासी है, अभी मेरी सकीना प्यासी है, अभी मेरा पूरा घराना प्यासा है। अरे वो प्यासे रहे, हुसैन कौसर के किनारे भी कौसर का पानी पीने को तैयार नहीं। सज्जाद ने कहा भी अम्मा अगर ये पानी आपने ना पिया तो मेरा बाबा जन्नत में भी प्यासा रहेगा। बस बस बहुत मैंने आपको जहमत दी। आखिरी जुमले, करबला का जंगल अंधेरा सन्नाटा, जैनब कुबरा ने पानी लिया लेकिन पानी पिया फिर भी नहीं। एक मर्तबा चारों तरफ देखा, एक कोने में सकीना सो रही है, सकीना को जैनब ही उठा के लाई है, वो सो रही है। जाके सकीना को बेदार किया, सकीना बेटी आंखें खोल आंखें खोल। सकीना ने आंखें खोली, फूफी अम्मा क्या बात है। कहा तू बहुत प्यासी है ना, पानी आ गया, पानी पी ले, पानी पी ले, पानी देखा। सकीना ने पहला जुमला क्या कहा, सकीना ने कहा फूफी अम्मा पानी आ गया, क्या मेरा चचा अब्बास आ गया है, आए कहाँ है मेरा चचा। जैनब ने कहा सकीना अब्बास नहीं आए, पानी आ गया। सकीना का जुमला है फूफी अम्मा सारे प्यासे हैं, मेरा भैया सज्जाद भी प्यासा है और बीमार भी है, आप भी प्यासी हैं, मेरी माँ और बाप तो प्यासी हैं, सब प्यासों को छोड़कर पहले पानी मुझे क्यों दिया जा रहा। जैनब ने कहा सकीना इसलिए कि दस्तूर यही है कि पहले सबसे छोटे को पानी दिया जाता है, बस इतना सुनना था। अब सकीना कुछ ना बोली, पानी हाथ में लिया लेकिन पानी फिर भी ना पिया, पानी लेके मखतल की जानिब चली। जैनब ने आवाज दी, सकीना बेटी कहाँ जा रही है, फूफी अम्मा आप ही ने तो कहा है पहले सबसे छोटे को पानी देते हैं। हाय मेरा असगर भैया करबला में सबसे कमजोर प्यासा है, असगर को पानी पिलाने जा रही। हाय मेरा असगर, हाय शाम-ए-गरीब।